ओम शांति, ओम शांति। बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों को इस समय आकर के रूहानी ड्रिल सिखाता हूं। रूहानी ड्रिल कैसी होती है? वो जिस्मानी ड्रिल सिखाते हैं ना, ड्रिल मास्टर होते हैं, सवेरे सवेरे बच्चों को ड्रिल सिखाते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग, पीटी कहते हैं उसे। तो स्कूलों में बच्चों को वो पीटी कराते हैं और उसमें क्या करते हैं, हाथ ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं। और मिलिट्री वालों को फिर क्या कहते हैं, अटेंशन प्लीज, सावधान। तो बाबा भी हम बच्चों को ड्रिल सिखाते हैं, लेकिन ये रूहानी ड्रिल है। क्या नाम है इस रूहानी ड्रिल का? मन मना भाव। इस ड्रिल का नाम है मन मना भाव, मुझे याद करो। तो वो ड्रिल कैसे हुई? अभी बाबा कहते हैं कर्म में आओ, अभी कर्म से न्यारे हो जाओ, अंदर चले जाओ, फिर कर्म में आओ और नेक्स्ट सेकंड में अंदर चले जाओ, कछुए मिसल सब समेट लो। वो कहते हैं श्वास अंदर लो फिर निकालो, अंदर लो श्वास निकालो। तो यहाँ श्वास की बात नहीं है, बाबा कहते हैं वो श्वास तो नेचुरल है तुम्हारे, और कई कहते इसी पर ही ध्यान दो, श्वास पर ही ध्यान दो, लेकिन बाबा कहते हैं अपनी रूह पर ध्यान दो। अंदर जाओ माना मैं आत्मा प्रकृति में विराजमान एक ज्योति हूँ, चले जाओ अंदर, फिर आत्मा देह द्वारा कर्म करे, फिर देह में आओ। करण करावन हार बाबा कहते बन सकते हो, मैं करता भी हूँ तो फिर इंद्रियों द्वारा करवाता भी हूँ। तो आज बाबा ने रूहानी ड्रिल की बहुत सुंदर बात कही है। इससे क्या होगा? बाबा कहते तुम बहुत तो विजयी बन जाएंगे और बहुत बड़ा इनाम मिलेगा तुम्हें। क्या इनाम मिलता है? स्वर्ग की बादशाही। कितना बड़ा इनाम है ये, इनसे कम तो दुनिया में तो बहुत कुछ देते इनाम, क्या क्या देते, सर्टिफिकेट देंगे, कुछ पैसा देंगे, एक मेडल देंगे, और क्या करेंगे, कोई मेमेंटो देंगे, कुछ देंगे, लेकिन या तो भगवान हमें स्वर्ग की बादशाही देते हैं, कितना बड़ा इनाम। तो सुनते हैं बाबा के माँ वाक्य आज 15/12/2025 है, और आज प्यारे अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाने का भी दिन है। हेडिंग है मीठे बच्चे, तुम अभी रूहानी बाप द्वारा रूहानी ड्रिल सीख रहे हो। इसी ड्रिल से तो मुक्ति धाम शांति धाम में चले जाएंगे, क्योंकि ड्रिल सीख करके हम आत्मा शक्तिशाली बन जाती है, पावन बन जाती है। तो इसी ड्रिल से तुम वापस मुक्ति धाम शांति धाम में चले जाएंगे पावन बनकर। प्रश्न है, बाप बच्चों को पुरुषार्थ तो कराते रहते हैं, हर मुरली में कितना बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे पूछते रहते हैं क्या पुरुषार्थ करें, क्या पुरुषार्थ करें। तो आज बाबा ने देखो क्या कहा है, बाप बच्चों को पुरुषार्थ तो कराते रहते हैं, लेकिन बच्चों को किस बात में बहुत स्ट्रिक्ट रहना है, अपने आप को कठोर, अपने आप में कठोर रहना है, करना ही है ये मुझे, स्ट्रिक्ट रहना है। तो किस बात में स्ट्रिक्ट रहना है? क्योंकि ढीले हो जाते हैं, सुनते तो हैं लेकिन जो बाबा कहते हैं उस अनुसार चलते नहीं हैं। तो इसलिए अपने आप को सावधान करना है और वो जो बाबा कहते हैं वो करना है। तो उसके लिए बाबा क्या कहते हैं, तो बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते लेकिन बच्चों को किस बात में बहुत स्ट्रिक्ट रहना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, मजबूत बनाना है उसमें, किसमें? उत्तर, पुरानी दुनिया को आग लगने के पहले तैयार हो, अपने को आत्मा समझ, बाप की याद में रह, बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने में बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। मुझे हर हालत में बाबा से पूरा वर्षा लेना ही है और उस अनुसार जो बाबा कहते हैं वो मुझे करना ही है, ये अपने साथ स्ट्रांग स्ट्रिक्ट रहना। नापास नहीं होना है, जैसे वो स्टूडेंट नापास होते हैं तो पछताते हैं, अब हम भी नापास हो जाएंगे, अपने ऊपर अटेंशन नहीं रखेंगे तो फिर क्या होगा, नापास हो जाएंगे, तो वो नापास होते तो पछताते हैं, समझते हैं हमारा वर्ष मुफ्त में चला गया, क्योंकि फिर वही क्लास में पढ़ना पड़ेगा, फेल हो गए तो। और कोई स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, कोई तो कहते हैं नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हें बहुत स्ट्रिक्ट रहना है अपने साथ। हाँ, टीचर ऐसा न कहे कि टू लेट, अब एग्जाम एकदम नजदीक है और पढ़ाई तो स्टूडेंट ने नहीं की है, फिर टीचर को कहे कि टीचर मुझे थोड़ा तो बताओ, तो टीचर कहेगा टू लेट, अभी मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। होता ना, सारा साल तो टीचर पढ़ाते हैं, उस समय तो ढीले ढाले रहे, परंतु एग्जाम के समय एग्जाम पेपर सामने हो और वो टीचर ही फिर एग्जामिनर भी बनता है, और उस समय वो टीचर को कहे, वो एग्जामिनर के रूप में है, परीक्षा ले रहा है सबकी, उस समय टीचर को कहे टीचर मुझे थोड़ा मदद करो ना, वो कहेगा टू लेट, अभी नहीं कर सकता हूं। तो इसलिए बाबा कहते हैं टीचर ऐसे न कहे टू लेट, अभी बहुत देर हो गई, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। तो देखो बाबा बीच बीच में सावधान भी करते रहते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को रूहानी पाठशाला में डायरेक्शन देते हैं, वह ऐसे कहें कि बच्चों को ड्रिल सिखलाते हैं, जो श्रीमत है बाबा की वो भी जैसे बाबा की ड्रिल ही है, या कहेंगे बाबा कहते हैं डायरेक्शन देते हैं, जैसे टीचर डायरेक्शन देते हैं वह ड्रिल सिखलाते हैं, तो ये रूहानी बाप भी बच्चों को डायरेक्ट कहते हैं, डायरेक्शन माना डायरेक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या डायरेक्शन देते हैं, क्या ड्रिल सिखाते हैं, मन मना भाव, जैसे वो कहते हैं अटेंशन प्लीज, मिलिट्री में परेड कराते हैं तो कहेंगे अटेंशन प्लीज, बाप कहते हैं मन मना भाव, ये जैसे हरेक अपने ऊपर मेहर करते हैं, अगर अटेंशन में रहते हैं, अपने ऊपर ध्यान है, उस जो बाबा कहते उस पर चलते हैं, तो बाबा कहते हैं अपने ऊपर आप मेहर कर रहे हो, रहम कर रहे हो। बाप कहते हैं बच्चे माँ में कम याद करो, अशरीरी बन जाओ, ये रूहानी ड्रिल रूहों को रूहानी बाप ही सिखलाते हैं, कोई देहधारी ऐसे नहीं सिखाएगा, वो तो यही सिखाए ऊपर हाथ नीचे हाथ, हाँ दाएं हाथ बाएं हाथ, ये तो वो उस रूप से सिखाएगा, लेकिन बाबा ही रूहानी ड्रिल सिखाते, आत्मा हूँ न्यारे बन जाओ, फिर कर्म में आओ, फिर न्यारे बन जाओ, ये रूहानी ड्रिल। तो बाबा कहते हैं ये रूहानी ड्रिल रूहों को रूहानी बाप ही सिखलाते हैं। अब वो है सुप्रीम टीचर, सुप्रीम टीचर तुम बच्चों को सिखाते हैं, फिर बाबा बच्चों को कहते तुम अब औरों को सिखाओ, मेन टीचर तो बड़ा होता है फिर वो सिखाता है, फिर वो जो सीखे हुए वो जाके दूसरों को सिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वो है सुप्रीम टीचर और तुम हो नायब टीचर, क्योंकि हम बच्चे भी तो सिखाते हैं ना, तो असिस्टेंट टीचर हो गए उस बड़े टीचर के साथ, उनसे सीखे हुए फिर दूसरों को सिखाते हैं, तो असिस्टेंट टीचर, उसको नायब टीचर बाबा कहते हैं। तुम भी सबको कहते हो अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, देही अभिमानी भव। मन मना भव का अर्थ भी यही है, देही अभिमानी होंगे तभी तो बाबा को याद कर सकेंगे ना। तो मन मना भव का अर्थ भी यही है, डायरेक्शन देते हैं बच्चों के कल्याण के लिए, ये डायरेक्शन है, मुझे याद करो बच्चों के कल्याण के लिए। खुद किससे सीखे नहीं है, शिव बाबा किससे सीखे नहीं है, और जो टीचर होते हैं वो सब टीचर खुद सीख कर फिर सिखलाते हैं, उनको थोड़ी आता है लेकिन सीख कर फिर सिखलाते हैं। शिव बाबा को किससे सीखना है, किससे नहीं, ये तो कहां स्कूल आदि में पढ़कर सीखा नहीं है, शिव बाबा नहीं सीखा है किसी स्कूल में, पढ़कर सीखा नहीं है, ये सिर्फ सिखलाते ही है, शिव बाबा केवल सिखलाते हैं। कहते हैं मैं तुम रूहों को रूहानी ड्रिल सिखलाता हूँ, ये सब जिस्मानी बच्चों को, हाँ वो सब जिस्मानी बच्चों को जिस्मानी ड्रिल सिखलाते हैं, उनों को ड्रिल आदि भी शरीर से ही करनी होती है, इसमें तो शरीर की तो कोई बात ही नहीं है, रूहानी ड्रिल में शरीर की तो कोई बात ही नहीं है। बाप कहते हैं मेरा कोई शरीर नहीं है, मैं तो ड्रिल सिखलाता हूँ, डायरेक्शन देता हूँ, उनमें ड्रिल सिखलाने का, अब जो ड्रिल सिखलाते कहीं से सीखा नहीं है तो उनमें कैसे आया ये हुनर ड्रिल सिखाने का, तो बाबा कहते हैं उनमें ड्रिल सिखलाने का ड्रामा प्लान अनुसार पाठ भरा हुआ है, किसने सिखलाया नहीं, कहीं कहते कैसे सिखा रहे, ड्रामा अनुसार पाठ भरा हुआ है, सर्विस भरी हुई है, वो आकर के सिखलाते हैं तो ये सिखलाने की भी सर्विस भरी हुई है। आते ही है ड्रिल सिखलाने, तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, ये तो बहुत सहज है, सीढ़ी तो बुद्धि में है, कैसे 84 का चक्र लगाए नीचे उतरे हैं। अब बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है, ऐसे और कोई भी अपने फॉलोअर्स को या स्टूडेंट्स को नहीं कहेंगे, न कोई गुरु अपने फॉलोअर्स को कहेगा, न कोई टीचर अपने स्टूडेंट्स को कहेगा कि हे रूहानी बच्चों अभी वापस जाना है, कोई नहीं कहेगा वापस जाना है, यहाँ घर जाना है, परम धाम जाना है, कोई नहीं कहेगा, सिवाय रूहानी बाप के कोई समझा न सके। तो बच्चे समझते हैं अभी हमको वापस जाना है, ये दुनिया ही अब तमो प्रधान है, हम सतो प्रधान दुनिया के मालिक थे, फिर 84 का चक्र लगाए तमो प्रधान दुनिया के मालिक बने हैं, यहाँ दुख ही दुख है, बाप को कहते हैं दुख हरता सुख करता, इसका मतलब क्या है, अर्थात दुख हरता सुख करता, अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला एक बाप ही है, क्योंकि सतो प्रधान बनेंगे तभी तो सुख अनुभव करेंगे ना, तो इसीलिए दुख हरता सुख करता अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला एक बाप ही है। तुम बच्चे समझते हो हमने तो बहुत सुख देखे हैं, याद आता है सतयुग का सुख, हमने बहुत सुख देखे हैं, कैसे राजाई की वो याद नहीं है। हाँ चलो कोई कहे बाबा कहाँ याद है कि हम कोई राजा थे, विश्व के मालिक थे, हम ऐसे थे, हम अभी याद नहीं है, तो फिर बाबा क्या कहेंगे, अगर बच्चे कहते याद नहीं है अब तो क्या करे, तो फिर बाबा कहते अच्छा याद नहीं है परंतु तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो सामने है ना, लक्ष्मी नारायण का चित्र तो तुम्हारे सामने है ना, वही देख लो, वही देख लो तो याद आ जाएगा कि हम ऐसे थे। वो है ही फूलों का बगीचा, अभी हम कांटे से फूल बन रहे हैं, तुम ऐसे नहीं कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, हम कैसे निश्चय करें हम कांटे से फूल बन रहे हैं, ये कैसे निश्चय करें। कई कहते हैं कि हमारा योग है नहीं है, कैसे पता चले, तो रिजल्ट से पता चलता, ऐसे थोड़ी है उस समय पता चलता। योग की जो रिजल्ट जो बाबा देते, अष्ट शक्तियां आती है, गुण जीवन में आते हैं, हल्कापन महसूस होता है, ये सब इसकी निशानी है ना कि योग हमारा लग रहा है। तो इसलिए बाबा कहते, कई कहते कैसे निश्चय करें कि हम कांटे से फूल बन रहे हैं। जीवन में परिवर्तन अगर नहीं आता है तो फिर कहेंगे कैसे, लेकिन परिवर्तन आ रहा है जीवन में तो निश्चित है ना कि हम बदल रहे हैं, हम हमारे ऊपर वो असर हो रहा है। अगर संशय है हम कैसे कहें कि हम कांटे से फूल बन रहे, तो निसंशय है तो फिर विनश्यन्ति, उनका विनाश निश्चित है, वो फूल बनेंगे ही कैसे। अगर संशय है तो विनश्यन्ति, स्कूल से पैर उठाया तो पढ़ाई बंद हो जाएगी, फिर पढ़ाई भी नहीं करते हैं, फिर कहेंगे कैसे बनेंगे, कैसे हम थे, कैसे कैसे ही खाली करते रहेंगे। तो माना जैसे स्कूल से पैर हटा रहे हैं, निश्चय खत्म, तो निश्चय खत्म तो विनश्यन्ति, तो पढ़ाई बंद हो जाएगी, फिर पद से भी विनश्यन्ति, इस पढ़ाई से तो विनश्यन्ति लेकिन फिर पद से भी विनश्यन्ति, बहुत घाटा पड़ जाता है, प्रजा में भी बहुत कम पद हो जाएगा। तो मूल बात है ही सतो प्रधान पूज्य देवी देवता बनना है। अभी तो देवता नहीं हो, अभी तो नहीं हो, अभी तुम ब्राह्मण भी, अभी तो देवता नहीं हो, तुम ब्राह्मणों को ही समझ आई है कि देवता बनना है। वो शूद्र बाबा कहते थोड़ी समझेंगे हमको देवता बनना है, तुम ब्राह्मणों को ही ये समझ आई है। तो ब्राह्मण ही आकर के बाप से ये ड्रिल सीखते हैं, तो अंदर में खुशी भी होती है, खुशी होती है ना, कैसे जो बाबा सिखा रहे हैं वो हम कर रहे हैं तो खुशी भी होती है। ये पढ़ाई अच्छी लगती है ना, भगवानो वाच है, भल उन्होंने श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है परंतु तुम समझते हो, श्री कृष्ण का नाम डाल दिया उन्होंने गीता पर, लेकिन तुम क्या समझते हो कि श्री कृष्ण ने तो ये ड्रिल सिखलाई नहीं है। गीता में अभी अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझो, कितनी बार उसमें गीता में आता है, तो ये भी एक ड्रिल है ना, मुझे याद करो, मुझे याद करो। तो बाबा कहते श्री कृष्ण ने तो ये ड्रिल सिखलाई नहीं है, ये तो बाप सिखलाते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा जो भिन्न नाम रूप धारण करते तमो प्रधान बनी है, उनको भी सिखलाते हैं, वही श्री कृष्ण की आत्मा 84 जन्म लेते लेते अंतिम जन्म में तमो प्रधान बनती है, उनको भी शिव बाबा सिखलाते हैं, खुद सीखते नहीं है, और सब कोई न कोई से सीखते जरूर है, बाबा किसी से नहीं सीखे हैं। ये है ही सिखलाने वाला रूहानी बाप, तुमको सिखलाते हैं फिर तुम औरों को सिखलाते हो। तुम 84 जन्म ले पतित बने हो, अब फिर पावन बनना है, इसके लिए रूहानी बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में तो तुम गाते आए हो, हे पतित पावन, हे पतित पावन, अभी भी तुम कहां से कहां भी जाकर देखो, कहां भी जाके देखो, यही धुन लगाते हैं पतित पावन, कहां भी जाकर देखो, तुम राज ऋषि हो ना, कहां भी घूम फिर सकते हो, देखो सत्संगों में देखो क्या सुनाते हैं, तुमको कोई बंधन नहीं है, तुम राज ऋषि हो, राजाई के लिए तुम बेहद के वैरागी हो ना, तुम राज ऋषि हो, तो तुम बच्चों को ये निश्चय है कि बेहद का बाप सर्विस में आए हैं, बाप बच्चों से पढ़ाई का उजूरा कैसे लेंगे, फीस कैसे लेंगे, भगवान हमारा पिता है और वो पिता बन करके हमको पढ़ाते हैं टीचर के रूप में, अभी उसके लिए फीस कैसे लेंगे? वो जो टीचर पढ़ाते ट्यूशन भी देते हैं तो पैसा तो लेते हैं ना, ऐसे थोड़ी पढ़ाते हैं हम बिना पैसे लिए। स्कूल में भी फीस देते हैं। अब यहाँ बाबा कहते हैं बाप का ही स्कूल है और बच्चे बाप के ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो बाबा उसके लिए फीस तो नहीं लेंगे ना, अपने ही बच्चों से क्या फीस लेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे मत समझो, बाप बच्चों से पढ़ाई का उजूरा कैसे लेंगे? टीचर के ही बच्चे होंगे तो फ्री पढ़ाएंगे ना, ये भी फ्री पढ़ाते हैं। अब हम जो बाबा को मदद करते हैं, धन से सेवा करते हैं, ये कोई फीस नहीं है। ऐसे नहीं इसकी स्कूल की कोई फीस है। कहीं पूछते हैं ना यहाँ की फीस क्या है, तो हम क्या कहते हैं, क्या यहाँ की फीस जो हर एक को देनी ही है हर हालत में, वो फीस क्या है? 5 खोटे पैसे बस, ये हमारी फीस है। बाकी तन से मन से धन से सहयोगी बनते हैं, ये फीस के रूप में नहीं है। ऐसे भी नहीं है कि यहाँ भोजन किया तो चलो, वहाँ भोजन किया तो हमको कितना देना पड़ेगा, या वो भी होटल भी नहीं है, वो भी नहीं है, यहाँ रहते हैं तो कितना, वहाँ तो होटल में पैसा भरना होगा, तब तक जाने नहीं देंगे। अब जब तक होटल में खाया दिया नहीं तो जाने नहीं देंगे। अब यहाँ तो ऐसी बात नहीं है, कहीं ऐसे ही खा के जाते, कोई जरूरी थोड़ी कि भंडारी में डालते, तो इसलिए वो फीस के रूप में नहीं है, कोई किराया के रूप में नहीं है। जो भी देते हैं ये सब बच्चे बन के बाबा के मददगार बनते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे मत समझो हम कुछ देते हैं, ये फीस नहीं है, तुम देते कुछ भी नहीं हो, ये तो रिटर्न में बहुत कुछ लेते हो। इसलिए कोई भी ये नशा या नहीं रख सकता, मैं तो बहुत मदद करता हूँ, मैं तो बहुत ये करता हूँ। हाँ, जो देते भी हैं बाबा को है किसका है, तो बाबा का ही ना, ये तन मन धन सब तेरा, ऐसे ही तो कहते आए ना, तो मैं देता हूँ ऐसे कैसे कहेंगे। तो बाबा कहते हैं ये तो रिटर्न में बहुत लेते हो, मनुष्य दान पुण्य करते हैं, समझते हैं रिटर्न में हमको मिलेगा दूसरे जन्म में, वो अल्प काल क्षण भंगुर सुख मिलता है, भल मिलता है दूसरे जन्म में, परंतु वो नीचे तो उतरना ही है ना। भले कितना भी दान पुण्य करे, चलो धनवान के घर में जन्म भी लेगा, लेकिन उनको सतो रजो तमो से तो नीचे से आना ही है। तो बाबा कहते हैं वो अल्प काल क्षण भंगुर सुख मिलता है, भल मिलता है दूसरे जन्म में, परंतु वो नीचे उतरने वाले जन्म में मिलता है। पहले जन्म से वो अगला जन्म जो लिया उससे नीचे वाला ही जन्म होगा, उसमें मिलता है। सीढ़ी उतरते ही आते हैं ना। अभी जो तुम करते हो वो है चढ़ती कला में जाने के लिए, ये बहुत ऊंची बात है। यहाँ भी अगर कोई शरीर छोड़ता है तो अगले जन्म में इस जन्म से भी ऊंचा जन्म होगा, इस जन्म से भी ऊंचा, क्योंकि पुण्य की कमाई साथ ले गया। तो पुण्य की कमाई जो साथ ले गया तो इस जन्म से भी तो उसका ऊंचा जन्म होगा ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी जो तुम करते हो वो है चढ़ती कला में जाने के लिए। कर्म का फल कहते हैं ना, आत्मा को कर्म का फल मिलता है। इन लक्ष्मी नारायण को भी कर्मों का ही तो फल मिला है ना। ये लक्ष्मी नारायण कैसे बने इतने ऊंचे? जरूर कोई अच्छे कर्म किए तभी तो उनको वो फल मिला है, तो अच्छे कर्मों का ही फल है उनका भी। बेहद के बाप से बेहद का फल मिलता है, वो मिलता है भक्ति मार्ग में, जो मिलता है वो है इनडायरेक्ट, ड्रामा में नोंद है वो भी। ये भी बना बनाया ड्रामा है, तुम जानते हो हम कल्प बाद आकर बाप से बेहद का वर्षा लेंगे। बाप हमारे लिए बैड स्कूल बनाते हैं, अलग अलग कितने सेंटर बनते जाते, ये बाबा ही तो बनवाते हैं ना, ताकि बच्चे बहुत दूर नहीं जाना पड़े, नजदीक ही सेंटर हो तो उस नजदीक के सेंटर में या गीता पाठशाला में जाके पढ़ाई करें। तो ये बाप ही हमारे लिए बेड स्कूल बनाते हैं, वो गवर्नमेंट के स्कूल है जिस्मानी स्कूल, जो भिन्न भिन्न प्रकार से आधा कल्प पढ़ते आए हो। अब बाप 21 जन्मों के लिए सब दुख दूर करने लिए पढ़ाते हैं। वहां तो है राजाई, उसमें नंबर वार तो आते ही हैं, जैसे यहां भी राजा रानी वजीर प्रजा आदि सब नंबर वार है। ये है पुरानी दुनिया में। नई दुनिया में तो बहुत थोड़े होंगे। कितनी सारी बड़ी दुनिया है बाबा कहते, वहां तो बहुत थोड़े होंगे, वहां सुख बहुत होगा। तुम विश्व के मालिक बनते हो, राजाएं महाराजाएं होकर गए है ना हमारे भारत में, यहाँ कितने राजाएं महाराजाएं होकर गए हैं, वो कितनी खुशियां मनाते हैं। द्वापर कलयुग में भी कितने राजाएं महाराजाएं हो गए, क्या नहीं खुशियां मनाई। तो बाबा कहते हैं वो कितनी खुशियां मनाते हैं, परंतु बाप कहते हैं उनों को तो फिर नीचे गिरना ही है। गिरते तो सब है ना, देवताओं की भी तो आहिस्ते आहिस्ते कला उतरती है, हर एक को गिरना है। तो देवताओं की भी कलाएं आहिस्ते 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 गिरती है उतरती है, परंतु वहां रावण राज्य नहीं है। भले सत्युग में पहला जन्म दूसरे जन्म में थोड़ा अंतर होगा, लेकिन वहां रावण राज्य नहीं है। तो ऐसा नहीं कि सुख खत्म हुआ और फिर दुख हुआ, नहीं, वो भी सुखी है, परंतु वहां रावण राज्य ही नहीं है, इसलिए सुख ही सुख है। यहाँ तो रावण राज्य है, तुम जैसे चढ़ते हो वैसे गिरते भी हो। आत्माएं भी नाम रूप धारण करते करते नीचे उतरती आई है। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले माफिक गिर कर तमो प्रधान बन गए हैं। काम चिता पर चढ़ने से ही दुख शुरू होता है। अभी है अति दुख, वहां फिर अति सुख होगा। तुम राज ऋषि हो, उनका है ही हठ योग। वो हठ योग चलो ऋषि है, हम राजयोग ऋषि है। तुम कोई से भी पूछो, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो नहीं कह देंगे, हाँ नहीं जानते। पूछेंगे वो जो जानते होंगे, वही दूसरों से पूछ सकते हैं कि रचयिता रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। खुद ही नहीं जानता हो तो पूछ भी कैसे सकते। तुम जानते हो ऋषि मुनि आदि कोई भी त्रिकालदर्शी नहीं थे। कैसे कहेंगे त्रिकालदर्शी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने तो नेति नेति कह दिया, नहीं जानते नहीं अंत पा सकते। तो बाबा कहते वो कैसे त्रिकालदर्शी होंगे। तो बाबा कहते तुम जानते हो ऋषि मुनि आदि कोई भी त्रिकालदर्शी नहीं थे, बाप हमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। अभी हम नहीं कहेंगे नेति नेति हम नहीं जानते, अब बाबा ने सब समझ दिए, बाप हमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। ये बाबा जो विश्व का मालिक था, ब्रह्मा बाबा, हाँ ये विश्व का मालिक था, इनको भी ज्ञान नहीं था। इस जन्म में भी 60 वर्ष की आयु तक भी ज्ञान नहीं था। 60 वर्ष की आयु में शिव बाबा ने इनमें प्रवेश किया, तब इनको ज्ञान मिला। जब बाप आए हैं तो भी आहिस्ते आहिस्ते ये सब सुनाते जाते हैं। बल निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, फिर भी बच्चों को आहिस्ते आहिस्ते सुनाते जाते हैं, फिर निश्चय बुद्धि भी हो जाते हैं। फिर क्या होता है, भल निश्चय बुद्धि भी हो जाते हैं, फिर भी माया बहुतों को गिराती रहती है, छोड़ती नहीं है। नाम नहीं सुना सकते हैं, कितनों को बाबा कितनों को माया ने गिराया है। अगर बाबा चाहे तो नाम सुना सकते हैं, लेकिन बाबा कहते नाम नहीं सुनाते हैं। नाम नहीं सुना सकते हैं, नहीं तो ना उम्मीद हो जाएगा। अगर वो सुनेगा कि मेरे लिए बाबा ऐसे कहते हैं, हाँ अगर चलो माया खा भी गई ले भी गई दुनिया में, और उसको बाबा की मुरली कभी सुन ली और कि फलाना ऐसे गया, तो उसका तो वो तो दिल शिकस्त हो जाएगा, ना उम्मीद हो जाएंगे। समाचार तो आते हैं ना, संग बहुत बुरा लगा, संग बुरा लगा, नई शादी की, किए हुए का संग हुआ। अब किसने तो ज्ञान छोड़ के बना शादी चलो कर ली का, मैं तो बहुत सुखी हो गया। अब ये सोचेगा मैं तो कुमार हूँ, देखो ये तो सुखी हो गया और ये शादी की। तो फिर बाबा कहते हैं संग बुरा लगा, नई शादी किए हुए का संग हुआ, चलायमान हो गया का मैं भी करूँ। हाँ कहते हैं हम शादी करने बिगर रह नहीं सकते, ऐसे भी कह देते हम नहीं रह सकते। अच्छा महारथी रोज आने वाला, यहाँ से भी कई बार होकर गया है बाबा। हाँ मधुबन में भी कई बार बाबा से मिलके गया है, कई बार होकर गया है। उसको भी बाबा कहते हैं माया रूपी ग्रह हप कर लिया। बाबा ने नाम नहीं लिया, हो गया होगा कोई माया रूपी ग्रह ने आकर के पकड़ा है। ऐसे बहुत केस होते रहते हैं। अभी शादी की नहीं अभी तक, उसने माया मुंह में डाल हप कर रही है, हप कर रही है धीरे धीरे। स्त्री रूपी माया खींचती रहती है, ग्रह यानी मगरमच्छ के मुंह में आकर के पड़े हैं। हमने कही पता नहीं किसी आश्रम में हम गए थे, वहां पर वो सारा म्यूजियम बना हुआ था, कैसे हाथी को वो मगरमच्छ खा रहा, उसकी टांग खींच रहा है अंदर ही अंदर, और वो हाथी तड़प रहा है और वो मगरमच्छ के पेट में जा रहा है हाथी। तो बाबा कहते ऐसे हाथी मगरमच्छ के पेट में नहीं जाएगा, लेकिन माया रूपी ग्रह मगरमच्छ कैसे महारथी को इतना अच्छा सेवा में आगे सदा और माया खा गई। तो बाबा कहते हैं माया मुंह में डाल हप कर रही है, स्त्री रूपी माया खींचती रहती है, तो ग्रह यानी मगरमच्छ के मुंह में आकर के पड़े हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते हप कर लेगी। कोई गफलत करते हैं या देखने से चलायमान होते हैं, समझते हैं हम ऊपर से एकदम नीचे खड्डे में गिर पड़ूंगा, कहेंगे बच्चा अच्छा, बच्चा बहुत अच्छा था। बाबा जब उनको देखेंगे कि भाई ऐसे गिर गया माया में फंस गया, तो फिर बाबा क्या कहेगा, मर गया। हाँ बाबा के हाथ से, बाबा की दुनिया से गया, तो फिर बाबा क्या कहेगा। हाँ तो बाबा कहेंगे बच्चा तो बहुत अच्छा था, अब बेचारा गया। हाँ बाबा बहुत अच्छा था, हाँ बच्चे, बाबा कहेगा बच्चा बहुत अच्छा था, अब वो बेचारा गया। सगाई हुई ये मरा, लेकिन कई तो बहुत बहादुर है, हमने देखा है जबरदस्ती चलो उनकी सगाई हुई भी, लेकिन कैसे वो स्त्री को समझाते हैं, उनसे प्रतिज्ञा करवाते हैं, उनमें से बहुत है, अभी भी कई है। तो बाबा कहते हैं सगाई हुई ये मरा, बाप तो बच्चों को सदैव लिखते हैं जीते रहो, बाबा तो यही लिखेंगे जीते रहो, कहां माया का वार जोर से न लग जाए। शास्त्रों में भी ये बातें कुछ है ना, ना है कुछ ये बातें शास्त्रों में, अभी की ये बातें बाद में गाई जाएगी, तो तुम पुरुषार्थ कराते हो, ऐसा न हो कहां माया रूपी ग्रह हप कर ले। किस्म किस्म से माया पकड़ती है, कैसे कैसे पकड़ती है, बाबा की मुरली में आता है, कभी नाक से पकड़ेगी, कभी कान से पकड़ेगी, कभी थप्पड़ मारेगी, कभी चोटी से पकड़ेगी, कभी गिरा देगी, बेहोश कर देगी, फिर आखिर मार ही डालती है, क्या क्या माया करती है। तो बाबा कहते हैं कहां माया, तो बाबा कहते हैं हाँ बाप तो बच्चों को सदैव लिखते हैं जीते रहो, कहां माया का वार जोर से न लग जाए। शास्त्रों में भी कुछ बातें हैं, अभी की ये बातें बाद में गाई जाएगी, तो तुम पुरुषार्थ कराते हो कि ऐसा न हो का माया रूपी ग्रह हप कर ले। किस्म किस्म से माया पकड़ती है, इसकी भी एक क्लास हो सकती है। नाक से कैसे पकड़ती है, नाक से पकड़ती है माया, माना अंदर में कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, संशय पैदा हो जाता है। अभी जैसे नाक से पकड़ो तो सांस नहीं ले पाएगा ना, तो अंदर में मूंझ होती है, समझो ये माया ने नाक पकड़ा है। कान कैसे पकड़ती है, कान से पकड़ा माना दूसरों की बातें सुनी, दूसरों की बातें सुनी और पर चिंतन करने लगा, तो ये समझो माया ने कान से पकड़ा, उसको देखा उसको देखा, ये वो बस वो ही करता रहेगा। तो कान से पकड़ा माया ने, फिर थप्पड़ कैसे लगाती है, कोई न कोई अंश विकार का आया। फिर चोटी से कैसे पकड़ती है, वो पीछे मुड़ के देखता, पहले तो मैं बहुत अच्छा था, जो चाहो सो करो, बड़ा स्वतंत्र था, अभी तो बाबा कहते ये नहीं करो ये नहीं करो ये नहीं करो, तो बाप तो पीछे देखते, जैसे चोटी ने पकड़ लिया, चोटी से पकड़ लिया, फिर ठोसा मारती है तो माया गिरा देती है। अब गिर गया तो सचमुच वो कर्म में कर दिया, फिर तो गया। तो इसीलिए बाबा कहते हैं किसम किसम से माया पकड़ती है, तो मूल है काम महाशत्रु, इनसे बड़ी संभाल करनी है। पतित दुनिया सो पावन दुनिया कैसे बन रही है तुम देख रहे हो, मूझने की तो बात ही नहीं है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। बाप ही पतित पावन है, ये है योग बल। भारत का प्राचीन राजयोग बहुत मशहूर है, समझते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, तो जरूर और कोई धर्म नहीं होगा ना। क्राइस्ट के आने से 3000 साल पहले पैराडाइज था, तो जरूर उस समय तो क्रिश्चियन धर्म नहीं होगा ना। तो कितनी सहज बात है, परंतु समझते नहीं है। अभी तुम समझते हो, वो राज्य फिर से स्थापन करने के लिए बाप आया है। 5000 वर्ष पहले भी शिव बाबा आया था, जरूर यही ज्ञान दिया होगा, थोड़ी को अलग थोड़ी पिछले 5000 साल पहले को अलग ज्ञान दिया होगा, अभी अलग ज्ञान देंगे, वही ज्ञान दिया होगा जैसे अब दे रहे हैं। बाप खुद कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम पर साधारण तन में आकर राजयोग सिखलाता हूँ, तुम राज ऋषि हो। हाँ, राज ऋषि हो, पहले नहीं थे, जब तक बाबा का ज्ञान नहीं था तो तुम राज ऋषि नहीं थे, राजाई के लिए ऋषि बने हो, तो पहले ये ज्ञान नहीं था, नहीं थे राज ऋषि। बाबा आया है तब से बाबा के पास रहे हो, पढ़ते भी हो, सर्विस भी करते हो, स्थूल सर्विस और सूक्ष्म सर्विस दोनों करते हैं ना, लौकिक में वो नौकरी धंधा भी सब करते और बाबा की पढ़ाई भी पढ़ते और सर्विस करते हैं, भक्ति मार्ग में भी सर्विस करते हैं, फिर घर बार भी संभालते हैं। बाप कहते हैं अब भक्ति पूरी हुई, ज्ञान शुरू होता है, मैं आता हूँ ज्ञान से सदगति देने। तुम्हारी बुद्धि में है, क्या है बुद्धि में, कि हमको बाबा पावन बना रहे हैं। तो बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार तुमको रास्ता बताने आया हूँ। टीचर पढ़ाते हैं ना, एम ऑब्जेक्ट सामने है, ये है ऊंच ते ऊंच पढ़ाई, जैसे कल्प पहले भी समझाया था वही समझाते रहते हैं। ड्रामा की टिक टिक चलती रहती है, सेकंड बाय सेकंड जो बीता सो फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। दिन बीतते जाते हैं, देखो 2025 भी जा रहा है, अंतिम महीना है, ये 2026 आ जाएगा, तो देखो। तो बाबा कहते हैं दिन बीतते जाते हैं, ये ख्याल और कोई की बुद्धि में नहीं है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत गया, वो फिर रिपीट होगा। बीता भी वही, क्या बीता, वही बीता जो कल्प पहले बीता था, वो भी कोई नई बात नहीं। बाकी थोड़े दिन हैं, वो तो लाखों वर्ष कह देते हैं, उनकी भेंट में तुम कहेंगे बाकी कुछ घंटे हैं। कुछ घंटे हैं, ये भी ड्रामा में नोंद है, अभी घंटे नहीं है, बाबा कहते कुछ मिनट है कुछ सेकंड है, घंटे भी बड़ी बात हो गई, ये भी ड्रामा में नोंद है। जब आग लग जाएगी तब जागेंगे, फिर तो कहेंगे टू लेट, अब आग लग रही है विनाश हो रहा है, फिर कहेंगे हमको ज्ञान सुनाओ, कौन ज्ञान सुनाएगा, कैसे ज्ञान सुनाएगा, टू लेट। तो बाप पुरुषार्थ कराते रहते हैं, तैयार हो बैठो, होशियार, तैयार, तैयार हो बैठो। टीचर को ऐसा न कहना पड़े, ऐसा अंत में न कहना पड़े, टू लेट, टू लेट, अभी नहीं कुछ हो सकता है। नापास होने वाले तो फिर पछताते हैं, समझते हैं हमारा वर्ष मुफ्त में चला जाएगा। कोई तो कहते हैं ना पढ़ा तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो क्या हुआ। तुम बच्चों को स्ट्रिक्ट रहना चाहिए अपने साथ, अपने असूलों पर कायम रहना चाहिए, ढीले ढाले नहीं बनना है, स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। हम तो बाप से पूरा वर्षा लेके ही छोड़ेंगे, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। अब इसमें कोई तकलीफ होती हो तो बाप से पूछो, हाँ भाई है किसको तकलीफ, कितना सहज बाबा करके बताते, कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। यही मुख्य बात है। बाप ने आज से 5000 वर्ष पहले भी कहा था, माम एकम याद करो, पतित पावन मैं हूँ, सबका बाप मैं हूँ। श्री कृष्ण तो सभी का बाप नहीं है, तुम शिव के श्री कृष्ण के पुजारियों को ये ज्ञान सुना सकते हो। आत्मा पूज्य नहीं बनी होगी, आत्मा अगर कल्प पहले पूज्य नहीं बनी होगी तो तुम कितना भी माथा मारो समझेंगे नहीं, उसके पाठ में ही नहीं है तो फिर समझेंगे कैसे। अभी नास्तिक बनते हैं, शायद आगे चल आस्तिक बन भी जाए, फिर पाठ खुल जाए, आगे शायद ना आस्तिक बन भी जाए। समझो शादी कर गिरता है, फिर आकर के ज्ञान उठाए, हो सकता है। हाँ ऐसे नहीं कि नहीं, कई है गिरते भी हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं, फिर बच्चों सहित आ जाते हैं, ज्ञान में चलते हैं। परंतु बाबा फिर परंतु क्यों ऐड करते हैं, परंतु बाबा कहते हैं वर्षा बहुत कम हो जाएगा, जो पहले ले सकता था उससे अब समझो गिरे तो वर्षा तो कम हो जाएगा। क्योंकि बुद्धि में दूसरे की याद आकर बैठी, शादी कर ली फिर बच्चे हो गए तो फिर और की याद बैठ गई, बाबा तो भूल ही गया ना, तो दूसरे की याद आकर बैठी, वो निकालने में बड़ा मुश्किल होता है। पहले तो स्त्री की याद, फिर बच्चे की याद आएगी, फिर बच्चा हुआ तो फिर बच्चे की याद आएगी, तो बच्चे से भी स्त्री जास्ती खींचती है, क्योंकि बच्चा तो पता नहीं 3-4 साल 5 साल के बाद पैदा हो, पर स्त्री तो साथ में ही है तो ज्यादा खींचती है। बच्चे से भी स्त्री जास्ती खींचेगी, क्योंकि बहुत समय की याद है ना स्त्री की। बच्चा तो पीछे पैदा होता है, फिर मित्र संबंधी ससुर घर की याद आती है, फिर पियर घर ससुर घर ये सारे याद आते हैं। पहले स्त्री जिसने बहुत समय साथ दिया है वो बहुत याद आती है, अब ये भी ऐसे है। तुम कहेंगे हम देवताओं के साथ बहुत समय थे, अब बाबा और ऊंचा ले जाते, तुम देवताओं के साथ बहुत समय थे, ऐसे तो नहीं कहेंगे, शिव बाबा के साथ बहुत समय से प्यार है। वो तो केवल संगम पर ही शिव बाबा को जानते हैं, तो परंतु देवताओं के साथ तो तुम आधा कल्प थे, ऐसे तो कहेंगे, ऐसे ऐसे तो कहेंगे शिव बाबा के साथ भी बहुत समय से प्यार है, चलो कोई 50 साल से ज्ञान में, 70 साल से, 80 साल से, तो बाबा कहते बहुत समय से प्यार है। कहेंगे जिसने 5000 वर्ष पहले भी हमको पावन बनाया था, कल्प कल्प आकर के हमारी रक्षा करते हैं, तब तो उनको दुख हरता सुख करता कहते हैं। तुमको बड़ा लाइन क्लियर बनना है, अब बाबा कहते कल भी बाबा ने कहा क्लियर और क्लीन, तब टचिंग आएगी, टचिंग बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कल, वो टचिंग तब आएगी जब बुद्धि एकदम क्लीन और क्लियर होगी। तुमको बड़ा लाइन क्लियर बनना है। बाप कहते हैं इन आंखों से जो तुम देखते हो वो सब क्या होना है, कब्र दाखिल होना है। अब आप सोचो किसी कब्रिस्तान में आप जाइए, सब कब्र में पड़े हैं, अभी क्या वहां दिल लगाएंगे, कब्रिस्तान से दिल लगाई जाती है क्या? तो बाबा कहते हैं वो सब कब्र दाखिल हो जाना है, अभी तुम हो संगम पर, अमर लोक आने वाला है, अभी हम पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। दुनिया में देखते रहते हो क्या क्या हो रहा है, अब बाप आया हुआ है तो पुरानी दुनिया भी खत्म होने की है, आगे चल बहुतों को ख्याल आएगा, जरूर कोई आया हुआ है। जब देखेंगे ना दुनिया का इतना बुरा हाल तो कहेंगे जरूर भगवान कहीं आया हुआ है जो दुनिया को चेंज कर रहे हैं। तभी बाबा ने कहा ना कोई कल्कि अवतार कोई ऐसे नहीं आने वाला है सफेद घोड़े पर चढ़ करके सफेद वस्त्र धारण करके, नहीं, ये तो तुम बच्चे हो, कितने कलंक लगे तुम्हारे ऊपर। और फिर बाबा कहते तुम ही नई दुनिया लाते हो। तो ये वही महाभारत, जरूर कोई आया हुआ है जो दुनिया को चेंज कर रहे हैं, ये वही महाभारत लड़ाई है। तुम भी कितने समझदार बने हो, ये बड़ी मंथन करने की बातें हैं। अपना श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना है, पर चिंतन पर निंदा पर ग्लानी, ये क्यों कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, ये करेगा तो मैं भी करूंगा। तो बाबा कहते ये सब गिराने के विचार है। तो बाबा कहे अपना श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना है, तुम जानते हो तुम्हारे श्वास सफल कैसे होंगे, कैसे होंगे श्वास सफल, ज्ञान से, ये ज्ञान ही तुम्हारे श्वास समय संकल्प शक्ति को सफल करेगा। नहीं तो अगर ज्ञान की बातें नहीं बुद्धि में और बातें हैं तो सब व्यर्थ जा रहा है। तो इसलिए तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो श्वास सफल होते हैं ज्ञान से। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला है माया से बचने के लिए संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है, अपनी लाइन क्लियर रखनी है, श्वास व्यर्थ नहीं गंवानी है, ज्ञान से सफल करनी है। दूसरा, जितना समय मिले योग बल जमा करने के लिए रूहानी ड्रिल का अभ्यास करना है, अभी कोई नए बंधन नहीं बनाने हैं। वरदान, बाप की छत्र छाया के अनुभव द्वारा विघ्न विनाशक की डिग्री लेने वाले अनुभवी मूरत भव। बाप की छत्र छाया के अनुभव द्वारा विघ्न विनाशक की डिग्री लेने वाले अनुभवी मूरत भव। जहाँ बाप साथ है वहाँ कोई कुछ भी कर नहीं सकता। बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरा साथी है, हाँ अंदर में ये समझ है तो डर भी खत्म हो जाएगा। जहाँ बाप साथ है वहाँ कोई कुछ भी कर नहीं सकता, ये साथ का अनुभव ही छत्र छाया बन जाता है। बाप दादा बच्चों की सदा रक्षा करते ही हैं। पेपर तो आते हैं, किस लिए आते हैं ये पेपर, आप लोगों को अनुभवी बनाने के लिए। पेपर क्यों आते हैं, आप बच्चों को अनुभवी बनाने के लिए। इसलिए सदैव समझना चाहिए ये पेपर क्लास आगे बढ़ाने के लिए आया है। क्लास में क्लास आगे बना, कदम आगे ऊंचा उठाने लिए ये पेपर आया है। इससे ही सदा के लिए विघ्न विनाशक की डिग्री और अनुभवी मूरत बनने का वरदान मिल जाएगा। यदि अभी कोई थोड़ा शोर करते व विघ्न डालते भी हैं, तो आखिर क्या होगा, धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे। कहाँ तक विघ्न डालते रहेंगे, ये तुमको डिग्री देने लिए आए हैं विघ्न विनाशक की और अनुभवी बनाने लिए आए हैं। स्लोगन, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है। समय पर मदद किया बाबा को तो वो बाबा कहते हैं समय पर जो सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। इसके अंतर्गत जैसे देखना, सुनना, सुनाना, ये विशेष कर्म सहज अभ्यास में आ गया है, ऐसे ही कर्मातीत बनने की स्टेज अर्थात कर्म को समेटने की शक्ति से अकर्मी अर्थात कर्मातीत बन जाओ। एक है कर्म अधीन स्टेज, दूसरी है कर्मातीत अर्थात कर्म अधिकारी स्टेज। तो चेक करो, मुझे कर्म इंद्रिय जीत स्वराज्य धारी राजाओं की राज्य कारोबार तो बाबा कहते तो चेक करो, मुझ कर्म इंद्रिय जीत स्वराज्य अधिकारी राजाओं की राज्य कारोबार ठीक चल रही है। हाँ, चेक करो अपनी कारोबार को, अपनी जो बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी राजाओं की राज्य कारोबार ठीक चल रही है, ये चेक करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सब
ये मोबाइल मिला किसी का कल
शाम। अच्छा, ये मोबाइल मिला है, कहाँ मिला है भाई?
मेडिटेशन
हॉल में मिला है कल शाम को। देखो योग में इतना चढ़ गया है। हाँ, योग में चढ़ गया, भूल गया कि मैंने अपना मोबाइल वहीं छोड़ा है।
हॉस्पिटल वाला किसी का है?
ये लगता है किसी हॉस्पिटल के भाई या बहन का है। तो कहाँ से ले रहे?
रिसेप्शन से।
रिसेप्शन से ले लेना जिसका भी हो।
चंद्रशेखर भाई का आया था, चंद्रशेखर भाई का फोन आया था अभी, जो पार्टी में रुके ना यहाँ, उनके सौगात क्लास के बाद।
अच्छा अच्छा, यहाँ जो भाई बहने रुके हुए हैं बाबा मिलन के लिए, यहाँ रुके हुए हैं, नीचे नहीं, जो एक दिन के लिए आए हैं वो नहीं, जो यहाँ रुके हुए वो हाथ उठाए, जो यहाँ पार्टियां रुकी हुई है पांडव भवन में, तो आप लोगों ने सौगात तो नहीं ली होगी, जो नीचे से आए उन्होंने तो सौगात ले ली होगी। तो जो यहाँ रुके हुए हैं उनको अभी योग के बाद वो सभी हिस्ट्री हॉल में जाएंगे, जहाँ शशि बहन आपसे मिलेंगी और सौगात देंगी। हाथ उठाएं, कितने हैं? अच्छा, काफी है, 12-15, ओके 15-20 हैं। तो आप सब जाएंगे और हिस्ट्री हॉल में शशि बहन देंगी, जहाँ भी देंगी नीचे पांडव भवन में मिलेगा। अभी जाएं नाश्ते से पहले योग करके, और सभी बैठे रहेंगे अभी योग के बाद। डबल विदेशी भाई बहनों से मिलेंगे, आपको सौगात देंगे, और जो भाई बहने यहाँ ठहरे हैं अगर आप नीचे जाना चाहें तो जा सकते हैं, परंतु यहाँ अगर आप रह रहे हैं तो यहाँ भी आप सुन सकते हैं, आंगन में मेडिटेशन हॉल में अव्यक्त मिलन का अनुभव कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। बाकी यहाँ पर वो ट्रांसमिशन दिखाई देगा, सुनाई देगा, यहाँ भी आप देख सकते हैं, क्योंकि नीचे भी बहुत बड़ी पार्टी आ गई है, बहुत आ गए हैं। एक तो जो भोपाल जोन, इंदौर जोन, वो भी बहुत बड़ा है, और साथ में फिर पंजाब जोन आया हुआ है मिलन के लिए, तो पंजाब जोन भी काफी बड़ा आया हुआ है। उनके तो पांच छह स्टेट्स है, तो उनके भी काफी भाई बहन आए हैं, तो इसीलिए मधुवन शांतिवन तो हाउसफुल है ही, लेकिन फिर भी अगर जाना चाहते हैं तो जरूर जाए, मना नहीं। ओम शांति। तो अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे, डबल विदेशी भाई बहने सब बैठे रहेंगे, आपको और भी इंस्ट्रक्शंस देनी